हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय सात श्लोक संख्या 1, 2 और 3। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वता विदूरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिना नीरस्तसाम्या तिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रोस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्य विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा नृपुलिन्द पुल्कषा आभीर शुम्भा यवनाख सादय येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदितायै न पुरा सरस्वती वीतन्वता चस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भुङ्क्तैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वसांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखं मुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7, जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। श्लोक नंबर 1। ब्रह्मा जी अब भगवान के विशिष्ट अवतार जो कि विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं उनके विषय में संक्षिप्त में बताएंगे, और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी इन सारे अवतारों को एकदम विस्तार से बताएंगे। तो अभी ये अवतार जो है वो बहुत ही संक्षिप्त में बताए जा रहे हैं, इसलिए हम उनको इतना डिटेल से नहीं, जितना मतलब बताया गया है उतना, और फिर एक एक अवतार बाद में आगे जाके डिटेल से बताया जाएगा। ठीक, तो एक दफा पहले भी हम लोगों ने अवतारों के विषय में पढ़ा था पहले स्कंद में, अभी वापस दूसरे स्कंद में भी इन सारे अवतारों को संक्षिप्त में बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, वे कहते हैं ब्रह्मोवाच यत्रोद्यत क्षिति तलोत्थरणाय विभ्रत् क्रौडिं तनु सकलयज्ञमयीं मनन्त अन्तर्महलम उपागतम दिदैत्यम् तं दंश्रयाद्रिमिव वज्रधरो दधार यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडिं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तम् अन्तर्महलव उपागतम दिदैत्यम् तं दंश्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार यत्रोद्यत। यत्र ब्रह्मा उवाच मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्र मतलब उस समय, उद्यत मतलब तत्र, क्षिति तल यानी पृथ्वी लोक के, उदराय उठाने के लिए, जिस समय पृथ्वी लोक पाताल में चला गया था उस समय उसको ऊपर उठाने के लिए, विभ्रत मतलब धारण किया, क्रौडिम यानी लीलाएं, तनुम यानी रूप, सकल यज्ञमयम सकल मतलब समग्र, यज्ञमयम मतलब यज्ञों से युक्त, अनंत यानी असीम, अंतर यानी ब्रह्मांड के भीतर, महा अर्णव, अर्णव कहते हैं जो गर्भ सागर है उसको, और उपागत यानी पहुंच गए, उपागत आदि आदि दैत्य मतलब प्रथम दैत्य यानी असुर को, वो वास्तव में आदि दैत्य यानी पहला असुर था जिसके पास भगवान पहुंचे, और तम दंश्रया अद्रिमा, तम मतलब उसको, दंश्रया मतलब धार से, अद्रिम यानी उड़ते पर्वत, इव वज्रधरा, इव मतलब सदृश, और वज्रधरा मतलब वज्रों को धारण करने वाला, ददार छेद दिया। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक सागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह रूप धारण किया, तो सबसे पहले असुर हिरण्याक्ष वहां आया, और भगवान ने अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। यहाँ पर दो चीजें बताई जा रही हैं, भगवान का अवतार कौन सा, उसका कारण कौन सा, और वो असुर कौन सा। उसका कारण क्या है इस अवतार का, यानी कि यहाँ बताया विशिष्ट कार्यों के लिए जो निर्धारित अवतार होते हैं। अब इसका क्या कारण था, क्योंकि पृथ्वी जो थी वो रसातल में चली गई थी, इसलिए कहा यत्रोद्यत क्षिति तलोद्धरणाय विभ्रत्। यानी कि क्षिति तल ये जो पृथ्वी लोक है वो जब रसातल में चला गया था तो भगवान ने एक ऐसा अवतार धारण किया अंतर महाणव उपागतमादि दैत्य, आदि दैत्य हिरण्याक्ष को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने हिरण्यक्ष नहीं पृथ्वी को अंदर डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तपस्या होती है, भक्ति होती है और भगवान के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, किए जाते हैं, जिससे भगवान को प्रसन्नता होती है। तो उनको हिरण्यक्ष को ऐसा लगा कि क्योंकि पृथ्वी पर जब तक ये लोग रहेंगे ना, तब तक ये सब ऐसे ऐसे कार्य करते रहेंगे जिससे देवता या विष्णु भगवान जो है वो प्रसन्न होंगे। तो फिर अगर वो मतलब दैत्य जो होता है ना, राक्षस का क्या मतलब है जानते हो? वो राक्षस जो होता है ना, उसको भले कोई दुख मिलता है ना, वो इतना ज्यादा दुखी नहीं होता, लेकिन जब दूसरों को सुख मिलता है ना, वो नहीं देख सकता। तो दूसरों के सुख को देखकर जो सुखी नहीं होता और दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी नहीं होता, वो राक्षस होता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये सारे मनुष्य भी तो इससे आनंदित होते कि भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भी उससे प्रसन्नता होती है कि वो सब भगवान की सेवा करते। पृथ्वी को ही हटा देना चाहिए, पृथ्वी है तभी तो यज्ञ करते हैं, पृथ्वी है तभी तो तपस्या करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स में ये सब नहीं होता, वो सब भोग्य, ये सब भोग जो है ना करने की जगह है, लेकिन ये पृथ्वी जो है वो कार्य करने की जगह है, ये कर्म हमारी कर्म भूमि है। तो उसने बोला ये कर्म भूमि नहीं होगी तो फिर लोग कोई भी यज्ञ तपस्या दान कुछ करेंगे नहीं। उसने क्या सोचा, ये सारी पृथ्वी जो है वो रसातल में डाल दी। फिर भगवान ने एक अवतार धारण किया जिसको वराह अवतार कहते हैं। तो सबसे पहला असुर यानी हिरण्यक्ष वहां आया और भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया, क्योंकि भगवान ने वराह का अवतार लिया था तो वराह के दो बड़े से दांत होते आगे, और भगवान ने उन दोनों दांतों के साथ उस हमें कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और पृथ्वी पर अधर्म जोर पकड़ता है उस समय, तब तक मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। इसलिए पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लिया था। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही हैं, जो ब्रह्मांडों के ग्रहों पर शासन चलाते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी हैं और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले सारे लोग देवता ही होते थे, बस असुर होते ही नहीं थे। नहीं, शुरू से ही दो श्रेणियां हैं, दो प्रकार के जीव हैं, एक देव स्वभाव के, एक असुर स्वभाव के। शुरू से ही ऐसा है, जैसे हम जानते हैं कश्यप की दो पत्नियां अदिति और अदिति, तो इसमें से अदिति है जो वो देवताओं की माता जी हैं और अदिति दैत्यों की। तो इस तरह से दैत्य और देवता जो है वो स्टार्ट से ही हैं, और प्रथम देवता कौन है? ब्रह्मा जी। और प्रथम असुर जिसके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं वो है हिरण्याक्ष। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायुमंडल में बारहीन गेंद के समान तैरते हैं, और जो ही ये परिस्थितियां विचलित हो जाती हैं, ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं, दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुंबद के रूप में है असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थित है, भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलकों की भीतरी संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी की
तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत ही हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष जो बड़ा स्वर्ण दस्यु था तथा उसके साथ के अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपर्युक्त थूथनी वाले विशाल शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। महान वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलि वनिमग्ना केशव धीरत शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। हे केशव, हे शुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी धाड़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो धरती या जितने भी ग्रह हैं, वो जो वायुमंडल में तैर रहे हैं, उसका कारण है कि उन ग्रह के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके कारण वो आसानी से अपने जितने भी इनके ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर वो चक्कर काट रहे होते हैं। लेकिन अगर इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर उनका यूं वायुमंडल में तैरना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए फिर वो गिरकर रसातल में जा सकते हैं। तो हिरण्याक्ष जो था वो बहुत ही सोने का लालची था, मतलब उसको सोना बहुत चाहिए होता था। उन्होंने पृथ्वी में से इतना सोना निकाला था कि पृथ्वी का जो संतुलन है ना वो बिगड़ गया था। इसे बताया ना, जो बड़ा स्वर्ण दुस्य था दस्यु, यानी कि इतना सोना, पृथ्वी एक साइड से बिल्कुल हल्की और टेढ़ी हो गई थी, जिसके कारण वो जो है ना वो अपने मदारिस में घूम नहीं पा रही थी। अपना ऑर्बिट के अंदर वो अपने आप को ये जो संतुलन है वो नहीं बना पा रही थी, तो इसके कारण वो रसातल में गिर गई थी, क्योंकि सारा सोना जो था हिरण्याक्ष ने निकाल दिया था। और दूसरा ये केशव प्रभुपाद जी ने एक और बात बताई कि यहाँ मॉडर्न आजकल जो मॉडर्न दौर है वहां पर क्या होता है, तेल हासिल करने के लिए जमीन को खोदा जाता है। ये श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मॉडर्न असुर के जरिए एक तरह की उत्पात खड़ा करना है, जिसके कारण पृथ्वी को अपने कार्य करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर एक श्री जयदेव गोस्वामी के गीत के द्वारा श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि जब भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने धाड़ों के ऊपर, अपने जो दांत थे उसके ऊपर रखा, तो इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कलंक युक्त चंद्रमा के अंदर थोड़ा सा धार होता है, वो कितना फिर भी आनंदित आकर्षित होता है, आकर्षित करता है ना सबको। इसी तरह से भगवान भले ही कोई भी स्वरूप धारण करते हैं, भगवान की अपनी जो पोजीशन है वो सच्चित आनंद है, वो सुंदरति सुंदर है। भगवान भले शुकर रूप में आते हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो ये तो शुकर का रूप या सुअर का रूप तो कितना घृणित है। भगवान जिस वस्तु को स्वीकार करते हैं, जिस स्वरूप को स्वीकार करते हैं, वो स्वरूप आनंदमय हो जाता है, प्योर हो जाता है। जैसे सुअर जो होता है वो गटर में रहता है, मैल खाता है, लेकिन और वो अपवित्र होता है, लेकिन जब गर्भोदक सागर से पृथ्वी को निकाल के वराह भगवान आए थे, तब क्योंकि वराह के ऊपर बहुत सारे बाल होते ना,
तब बाहर आकर उन्होंने जैसे ही अपने बालों को ऐसे से छिड़का, जैसे छिड़कते हैं ना स्नान करने जो ये सुकर होते हैं, वो ऐसे छिड़क रहे थे, तो सारे देवी देवता जो थे वो भगवान के करीब आ रहे थे, और भगवान के करीब आकर वो जो छींटे हैं ना वो चाह के हमारे ऊपर आए, ताकि इन छींटों के हमारे ऊपर पड़ने से जो है वो देवता पवित्र हो रहे थे। तो पृथ्वी पवित्र हो गई भगवान के स्पर्श से, देवता पवित्र हो गए भगवान के जो शरीर के जो छींटे हैं उससे। इतनी समझ सकते हैं कि कितना भगवान का अद्भुत स्वरूप है। भगवान रसातल में, क्योंकि ये रसातल जो है वो बहुत ही निचली जगह होती है, जहां पर जाने के लिए भगवान को शुकर का रूप धारण किया, लेकिन जहां पर भी भगवान जाए, चाहे वो कैसी भी स्थान हो, जो भी स्वरूप भगवान धारण करें, चाहे वो कैसा भी हो, भगवान जो है वो परम पवित्र है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है, भगवान का अवतार कुछ मन चले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं होता, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार बना देने वाले को भगवान के वास्तविक विराट शुकर अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त होती थी। यानी कि इतना भगवान का अवतार होता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जिस कार्य के लिए आता है वो उस कार्य को संपन्न करता है, और बगैर किसी कठिनाई के। हम सोच सकते हैं इतनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी कितनी विशाल है, इसके अंदर कितने सारे पहाड़ हैं, दरिया हैं, नदियां हैं, सारी की सारी पृथ्वी कितनी विशाल हो गई। ऐसा नहीं, हमको जब हम मूवी में देखते हैं तो क्या होता है, एक छोटा सा गोल होता है गेंद के जैसा, वो उधर रखा होता है उनके साथ। लेकिन हम सोच सकते हैं हमारा एक बिल्डिंग होता है वो कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, कितने सारे कंट्रीज होते हैं, वो सारे कंट्रीज सारी चीजें जो है वो पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी भगवान ने कहा उठाई अपने दांत के ऊपर, तो विशाल कितना होगा। वो वाला जो शुकर स्वरूप है वो ब्रह्मा जी की नासिका से जब निकला था तो बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल मच्छर के जितना था, और देखते ही देखते वो इतना विशाल हो गया कि पूरी पृथ्वी जब उनके दांतों के ऊपर रखी थी ना तो ऐसा लग रहा था कि छोटा सा गेंद है। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान के अवतार में कितनी अद्भुत शक्तियां होती हैं। आदिश्वर प्रभुपाद जी जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष नामक असुर ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेद कर मार डाला। कितना ही बड़ा असुर हो, भगवान के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान एक दांत मार के इतने बड़े बड़े असुर को मार डालते हैं। तो भगवान ने जब देखा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे पृथ्वी को बाहर ले जाने में, भगवान को राक्षसों को मारने में इंटरेस्ट नहीं होता है, भगवान तो सिर्फ अपने जो शरणागत है उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। पृथ्वी भगवान की शरणागत है तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान आए। अब वो डिस्टर्ब कर रहा है, पृथ्वी की रक्षा करने नहीं दे रहा, तो फिर क्या हुआ, भगवान ने अपने दाढ़ से भेद कर उसे मार डाला। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष कवच भगवान के हाथों से हुआ, अतएव उनका कथन यह है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से भेद डाला। श्री लवेश्वरनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ने इस कथन की पुष्टि की है। तो चाहे दांतों से मारा हो या हाथों से मारा हो, ये तो वास्तव में उस मरने वाले का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और हम सब जानते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति तो वो थे नहीं, तो भगवान के द्वारपाल थे, तो भगवान की कृपा तो उनके ऊपर होनी ही थी, क्योंकि इतनी सेवा की है उन्होंने,
ایک ذرا سی بھی سیوا جو بھگوان کی کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بھگوان بتاتے ہیں نیہا وکرم ناشوستی پرتی وایو نویتھیتے سلپم اپیاسیہ دھرم سے ترایتے مہتو بھیات. تو یہ بھگوان ہے, وہ چاہے کسی بھی ہم چاہے کسی بھی استھتی میں چلے جائیں, وہ بھگوان اپنی کرونا اور کرپا جو ہے وہ ہم پر کرنا نہیں بھولتے. اب یہ الگ بات ہے اس کرپا کو ہم اسر کی طرح کاریہ کر کے بھگوان ود کرنے اس کے لیے پریرت کریں, یا بھگوان کے بھکت بن کر بھگوان سے پریم کا آدان پردان کریں اور بھگوان ہماری سرکشا کرنے کے لیے سنسار میں آئے, تو ہم جیسا رکھیں گے بھگوان کے ساتھ سمبندھ بھگوان اسی طرح سے ڈیل کریں گے. یہ یتھا مام پربدھیانتے تانس تتھیو وپسامی ہم. آگے برہما جی دوسرے اوتار کے وشے میں, ابھی ایک سوک یہ ورہا اوتار ہو گیا, اب سیکنڈ جو ہے وہ یگیا اوتار کے وشے میں کہتے ہیں. جاتو رچیر جنیت سویمان سویگیا آکوتی سونو رمران تدکشنایا لوک ترایسیا مہتیم اہرت یدارتیم سوائیم بھووینا منونا منونا حریریتیت نوکتا جاتو رچیر جنیت سویمان سویگیا آکوتی سونو رمران تدکشنایا لوک ترایسیا مہتیم اہرت یدارتیم سوائیم بھووینا منونا حریریتیا نوکتا جاتو رچیر جنیت. جاتو مطلب اتپن ہوا, رچیر ارتھات پرجاپتی کی پتنی کے, جنیت اجنیت مطلب جنم ہوا, سویمان یعنی سویم اتیادی, سویگیا سویگیا آکوتی سونو یعنی آکوتی کا پتر, امران یعنی دیوتا, اتھا اس پرکار دکشنایام دکشنا نام کی پتنی, رچی پرجاپتی کی جو پتنی تھی وہ تھی آکوتی, اور آکوتی کے دو پتر ہوئے, ایک پتر ہوا اور ایک پتری, دکشنا نام کی ایک پتری اور یگیہ نام کا ایک پتر, تو اس کے وشے میں بتا رہے ہیں. آکوتی سونو رمانت دکشنایام لوکتریسیہ مہتیم اہرت یدارتیم, لوکتریسیہ یعنی تینوں لوکوں کا مہتیم اتی وشال اہرت کم کیا, یت یہ سب, آرتیم یعنی کلیش, تینوں لوک جو تھے وہ بہت بہت کلیش میں تھے. لوکتریسیہ مہتیم اہرت یدارتیم سب دکھی تھے. کیوں دکھی تھے؟ کیونکہ اندر نہیں تھے, تو اندر کے نہ ہونے کے کارن سارے لوگ کو سارے دیوتا جو تھے وہ ساری فیسلٹی سمے پر نہیں دے رہے تھے, اس کے کارن سب دکھی تھے. تو پھر کیا ہوا؟ سوائم بھو منو دوارا, منونا ارتھات منوشیوں کے پتا دوارا, ہری اتی ہری اس پرکار, اور انوکتا یعنی نام رکھا. تو یہ اس سمے کی بات بتا رہے ہیں کہ جب اندر جو تھا وہ نہیں تھا, مطلب ایک سمے ایسا آیا ایک منو کے منونتر میں ایسا ہوا کہ اندر بننے کی یوگیتا کوئی بھی نہیں پراپت کر سکا. اب یہ سارے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں وہ تو پوسٹ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ آپ کے اندر کوئی بھی دیوتا بننے کی پوسٹ ہوگی تو ایبلٹی ہوگی تو آپ کو اس پوسٹ پہ بٹھا دیا جائے گا. اور وہ چینج کب ہوتے ہیں, دیوتاؤں کی پوسٹ چینج کب ہوتی ہے, ایسا بتاتے ہیں کہ برہما کے ایک دن میں 4,32,00,000,000 ورش ہوتے ہیں, ایک دن میں 4,32,00,000,000 ورش ہوتے ہیں, اور 1,000 چتریوگی ہوتی ہے. چتریوگی مطلب ستیوگ تریتا دواپر اور کل یوگ, یہ چار یوگوں کا مل کر ایک چتریوگی ہوتی ہے. ستیوگ میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 1,728,000,
द्वापर युग में 12,96,000, में 8,64,000 और कलयुग में 4,32,000। तो ये सब मिलके कितने बनते हैं? 43,20,000, 43,20,000। तो 43,20,000 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 1,000 से, तो आता है 4,32,00,000 वर्ष। तो ये 4,32,00,000 वर्ष जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इस एक दिन में 14 मनु होते हैं। अभी मनु क्या होते हैं? मनु जो है वो कुछ समय के लिए शासन करते हैं, है ना। उसके बाद जब एक मनु हो जाता है और उसके बाद दूसरा मनु आता है, तो जब मनु समाप्त होता है उस समय ये सारे देवी देवताओं को चेंज किया जाता है। अब मनु, एक मनु की आयु कितनी होती है? जैसे ब्रह्मा जी के पास 1,000 चतुर्युगी है ना, तो एक दिन में 14 मनु होते हैं, यानी 1,000 चतुर्युगी को 14 में डिवाइड किया जाता है, और फिर एक एक मनु को 71 चतुर्युगी मिलता है, यानी हर एक मनु के पास 71 चतुर्युगी होता है, और हर 71 चतुर्युगी के बाद जो है वो सारे जितने भी देवी देवता हैं वो चेंज होते हैं, ब्रह्मा जी नहीं चेंज होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो अपना पूरा 100 साल कंप्लीट करेंगे ना। तो मतलब अभी जो मनु चल रहा है वो 7वां मनु है। टोटल कितने मनु होते हैं? 14 होते हैं, और 7वां मीन्स सेंटर का मनु, सेंटर का हुआ ना। देखो 14 है और 7वां चल रहा है तो सेंटर का हुआ, और सेंटर का हुआ मतलब अभी ब्रह्मा जी के 50 साल कंप्लीट हुए हैं, है ना। अभी भी जब महाप्रलय आने को ब्रह्मा जी के और 50 साल, मतलब इसके और भी 7 मनु रहेंगे। 7 मनु मतलब अभी तक ये चतुर्युगी जो है वो और 400-500 बार होगी, क्योंकि अभी तो पूरा 50 इयर्स ब्रह्मा जी के बाकी हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 4,32,00,000 वर्ष के। तो उसके बाद जो है अब क्या होता है कि जब एक मनु की आयु समाप्त होती है तो फिर सारा जितना भी सिस्टम है देवताओं वगैरह का वो सब चेंज हो जाता है। तो ये जो सातवां मनु जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पर कोई भी सत्युग जब हुआ ना, तो कोई भी इंद्र बनने के लिए नहीं था, किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए नहीं थे ना, तो इंद्र कोई बनने के लिए तैयार नहीं था। अब पहले वाला जो इंद्र था उसका समय समाप्त हो गया। असल में क्या होता है, सृष्टि की शुरुआत में जिन जिन लोगों ने सृष्टि को सृजन करने में ब्रह्मा जी का साथ दिया ना, उनको प्रजापति कहते हैं। प्रजापति जो होते हैं वो क्या करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने में और कार्यभार संभालने में ब्रह्मा जी को हेल्प करते हैं। और प्रजापति कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे प्रजापति होते हैं, दक्ष प्रजापति, कर्दम प्रजापति, गौतम प्रजापति, रहित, तो इस तरह के ये सारे प्रजापति मिलकर ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं। और प्रजापति का जन्म कैसे हुआ? प्रजापति का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे ही मतलब प्रजा करते थे आपस में, लेकिन फिर बाद में लगा कि मैथुनी सृष्टि जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने शत्रुपा और मनु को उत्पन्न किया, मतलब अपने राइट साइड से शत्रुपा और अपने लेफ्ट साइड से मनु को, इन दोनों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह कर दिया, मनु और शत्रुपा का विवाह कर दिया। और मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, पुत्र एक देवव्रत और एक उत्तानपाद। और 3 पुत्रियां कौन सी हुई? देहूति, प्रसूति और आकुति। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया, उनके यहाँ पर 9 पुत्रियां और एक पुत्र यानी कपिल देव वो उत्पन्न हुए। और प्रसूति का विवाह जो था वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, उसमें से 13 जो है वो धर्म के साथ विवाह उनका हुआ, 13 का, 1 का विवाह अग्नि के साथ, और 1 जिनका नाम था सती उनका विवाह हुआ शिव जी के साथ। अभी उनकी 1 पुत्री रह गई, क्या नाम है उनका? आकुति। और आकुति के विषय में यहाँ पर बताया जाता है, आकुति का विवाह किसके साथ हुआ? प्रजापति रुचि के साथ हुआ। आकुति
और प्रजापति रुचि के यहाँ पर एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम था यज्ञ, जो कि साक्षात भगवान नारायण का अवतार है, और पुत्री का नाम है दक्षिणा, जो भगवान नारायण की चिर संगिनी लक्ष्मी महारानी है। अब यहाँ पर विडम्बना ये है कि एक ही माता पिता यानी आकृति और प्रजापति रुचि के यहाँ पर नारायण और लक्ष्मी का अवतार हुआ है, तो ये कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है। हमारी भौतिक बुद्धि जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती या इस बात को समझ नहीं पाती कि ये लक्ष्मी और नारायण एक ही माता पिता की संतान कैसे हो सकते हैं, वो तो चिर संगिनी है। तो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो चौथे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 4 के तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं कि भगवान जब संसार में आते हैं तो हमारी तरह कर्मों के वश नहीं आते हैं। भगवान जो है वो अपने कार्य करने के लिए आते हैं, और भगवान कैसे भी आ सकते हैं, वो बद्धावस्था में नहीं है, उनको कोई अपवित्रता छू नहीं सकती है, उनके वो कभी कुछ गलत कर नहीं सकते। ये अलग बात है कि हमारी जो बुद्धि है ना वो नहीं समझ पाती कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे। तो यज्ञ का विवाह जो है वो दक्षिणा के साथ होता है, और ये यज्ञ जो भगवान का अवतार है उस वो अवतार लेने का भगवान का क्या कारण था। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, एक मनु के जीवन काल में 71 चतुर्युगी होती है। जब मनु बदलता है तो उसके बदलने से पूरा सिस्टम चेंज होता है। जैसे जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद सारी पार्लियामेंट चेंज होती है, मंत्री प्रधानमंत्री सदर वजीर आजम सब चेंज होते हैं ना, उसी तरह से जब मनु बदलता है तो इंद्र भी बदलता है, सारे देवी देवता भी बदलते हैं, गंधर्व लोक सप्तऋषि ये सब बदलते हैं। तो सातवें मनमंत्र में जब वैवस्वत मनु का समय स्टार्ट हुआ उस समय इंद्र की पदवी संभालने के लिए कोई योग्य था नहीं, उस समय आकुति कौन है, आकुति मनु और शत्रुपा की पुत्री है। आकुति और प्रजापति रुचि कौन है, वो प्रजापति हैं जो कि ब्रह्मा जी उनके विवाह के बाद उनका जो पुत्र हुआ यज्ञ जो कि भगवान का अवतार था, उन्होंने अपने नाना यानी स्वयंभू मनु के राज्य को संभाला और इंद्र की पदवी संभाली, उनको 12 पुत्र हुए। और सारी ये जो सृष्टि है जितने भी है ना सप्तऋषि हैं, सारी सृष्टि का कार्यभार जो है वो उन्होंने अपने 12 पुत्रों को सौंप दिया, और स्वयं जो है वो इंद्र की पदवी को स्वीकार किया। तो इंद्र की पदवी को स्वीकार करना इतना आवश्यक क्यों था कि भगवान को स्वयं आना पड़ा, क्योंकि इंद्र जो है वो सारे देवी देवताओं को कंट्रोल करते हैं, और सारे देवी देवता क्या करते हैं, सृष्टि को पालन करने में जो है वो अपना योगदान देते हैं। जैसे सूर्य देव है, चंद्र देव है, वरुण देव है, पवन देव है, यदि ये सारे देवी देवता सहयोग नहीं देंगे ना तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो इंद्र नहीं होंगे तो सारे देवी देवता भी कार्य नहीं करेंगे, तो इंद्र होंगे तभी सारे देवता सारी सृष्टि जो है वो प्रसन्न हो सकती है। तो यहाँ पर एक कारण तो ये हुआ कि इंद्र का होना बहुत आवश्यक है, और दूसरा कारण क्या है भगवान के यज्ञ रूप में अवतार लेने का, कि इंद्र न होने के कारण कुछ राक्षस जो थे वो स्वयंभू मनु के शासन को बिगाड़ रहे थे। भगवान यज्ञ ने इन सब राक्षसों का वध करके राज्य को सुरक्षित किया, इसके लिए भगवान ने यज्ञ का अवतार लिया। अनुवाद देखिए, सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ, फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम आदि देवताओं को उत्पन्न किया, सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए, फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयं भूमनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्युक्त हरिरित्य नुक्त, यानी कि
ان کا نام ہی رکھ دیا ہری، کیونکہ ہری کیا کرتے ہیں، سارے کشٹوں کو دور کرنے والے ہیں، سارے کلیش جو تھے اتنا اردو نمن تتھا مدھیہ لوگ سارے ڈسٹرب ہو گئے تھے، ہے نا. سوریہ نے اندر کے روپ میں تینوں گرہ منڈلوں کے مہان کلیش کو کم کر دیا تھا، اور کم کرنے کے بعد برہمانڈ کے دکھ دور کرنے سے مانو جاتی کے مہان پتا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پورے مانو جاتی کو کلیان ملا ہوا ہے، پورے دیوتاؤں کا کلیان ہوا ہے، سارے لوگ پرسن ہوئے ہیں، تو یہ سارے لوگوں کے جو دکھ ہرنے والا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ ہری ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو ہری نام سے پکارا. شیلا پروپاد کی جے. شیلا پروپاد جی کہتے ہیں منموجی کم بدھی والے پروش نئے نئے ان ادھکرت اوتاروں کی کھوج کرتے رہتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے دھرم گرنتھوں میں پرمانک اوتار کے پتا کا نام بھی دیا رہتا ہے. فلتہ یدی شاستروں میں کسی اوتار کے پتا کا تتھا پرکٹ ہونے والے گرام یا استھان کا اللیکھ نہیں ہے تو بھگوان کا اوتار نہیں مانا جائے. اب یہاں پر دیکھو شیلا پروپاد جی بہت خاص بات بتا رہے ہیں کہ کوئی لوگ ہیں نا وہ کسی کو بھی اوتار مان لیتے ہیں، کچھ نہ اس کے ماتا پتا کے بارے میں پتا ہوتا ہے، کہاں پر پیدا ہوگا، شاستروں میں سارا لکھا ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر لکھا جاتو روچیر جنیت یمو سویمان سویگیا، اس کے ماتا کا اس کے پتا کا پریچے دیا روچیر جنیت روچی دوارا، اور اس کی ماتا کا نام آکوتی سونو رمرانت، آکوتی جو ہے اس کی ماتا کا نام ہے. تو اس طرح سے ہر ایک جو بھی دیوی دیوتا ہوتے ہیں، سوری جو بھی بھگوان کے اوتار ہوتے ہیں، ان کے ماتا پتا کا نام دیا جاتا ہے شاستر میں. شیلا پروپاد جی بولتے ہیں کہ کسی بھی اوتار کے پتا کا تتھا پرکٹ ہونے والے گرام یا استھان کا اللیکھ نہیں ہے تو اسے بھگوان کا اوتار نہیں مانا جا سکتا ہے. بھاگوت پوران میں کلکی اوتار جو لگ بھگ 400,000 ورش کے بعد پرکٹ ہونے والا ہے، ان کے پتا تتھا جہاں پر ان کا اوتار ہوگا اس گرام کا نام نردیشت ہے. پلتہ کوئی بھی بدھیمان پروش کسی سستے اوتار کو شاستروں کے سندرب کے لیے بنا شاستروں کے سندرب کے بنا سویکار نہیں کرے گا. تو یہ دیکھو آج کل بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ کلکی اوتار ہے، یہ تو کلکی اوتار ہے، لیکن آنے کا بھی ایک سمے ہے. ابھی تو کلیوگ ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 432,000 نا. ابھی تو اس میں سے صرف 5,000 سال بیتے ہیں، ابھی تو 427,000 سال باقی رہ گئے ہیں. تو شیلا پروپاد جی بول رہے ہیں کہ لوگ ابھی سے ہی بیوقوفوں کی طرح کبھی کسی کو کلکی اوتار مان رہے ہیں، کبھی کسی کو اوتار، تو حالانکہ ان کی ماتا پتا کا نام لکھا ہوا ہے کہ وشنو شاہ جو برہمن ہیں ان کے یہاں سے وہاں پر وہ پیدا ہوں گے، سمبل گرام میں پیدا ہوں گے، تو سب کچھ پہلے سے شاستروں میں بتایا گیا ہے. اس لیے ہم کو شاستروں کے انوسار ہی یہ طے کرنا چاہیے کہ کون بھگوان کا اوتار ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا ہے. آگے برہما جی دیہوتی کے پتر بھگوان کپل کے وشے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں جے کی چکرتا مگری دیج دیو ہوتیام تریبھی سامم نو بھیراتم گتیم سواماتے اوچے یاتم شاملم گن سنگ پنکام اسمن ویدویا کپیلسیا گتیم پرپیدے جگی چکرتا مگریہے دویج دیہوتیا جگی چکرتا مگریہے دویج دیوہوتیا ستریبھی سامم نو بھیراتم گتیم سواماترے اوچے یاتم شملم گن سنگ پنکم اسمن ویدویا کپیلسیا گتیم پرپیدے جگی چکردم گریہے جگی مطلب جنم لیا کہاں پر کردم گریہے کردم مطلب کردم نام کے پرجاپتی کے گریہے یعنی گھر میں دویجے دیہوتیا دیوہوتیا دویجے مطلب ہے برہمن دیوہوتیا میں
मतलब देवहूति के गर्भ से, स्त्री भी समम नवभिरात्म गतिम स्वमात्रे, स्त्री भी मतलब स्त्रियों द्वारा समम के साथ में नव भी नव आत्म गत्याम आत्मबोध स्वमात्रे अपनी माता से, और नौ जो है उनकी कन्या उत्पन्न हुई थी। ऊंचे ऊंचे ययात्म शमलम गुण संकपंक, ऊंचे मतलब कहा, यया जिससे आत्म शमलम यानी आत्मा का आवरण, गुण संग पंकम गुणों के साथ कीचड़, अस्मिन विदुर्य मतलब इसी जीवन में, अस्मिन मतलब इसी जीवन में, विदुर्य मतलब धुल गया, कपिलस्य भगवान कपिल कपिल की गतिम प्रपेद, गतिम मतलब मुक्ति, प्रपेद मतलब प्राप्त की, मुक्ति प्राप्त कर, उसी जीवन में जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक जीवन है, उसकी सारी गंदगी जो है वो समाप्त हो गई और उन्होंने भगवान कपिल की कृपा से मुक्ति प्राप्त की। अनुवाद देखिए, इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य नौ स्त्रियों यानी बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन में, जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ के से विमल हो गए और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 25 से 32 में दिए गए हैं, और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त करता है। शास्त्र इसीलिए है, मूर्ख तथा अल्पज्ञानी लोग अपनी कल्पना से उनकी खुद की विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उनके भौतिक संसार के गर्त में पड़े रहने के कारण बनते हैं। किंतु आज भी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या भगवान कपिल के उपदेशों का पालन करे तो उसे सर्वोपरि लाभ हो सकता है। अत्यंत सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लाभ उसी को, वास्तविक लाभ उसी को प्राप्त होता है जो रास्ता सही पकड़ता है। यदि मार्ग सही होगा तो मंजिल भी प्राप्त हो जाएगी, यदि मार्ग ही सही नहीं होगा तो भला हम सही लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। हमारा लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, और वो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूटना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन मनुष्य इसी संसार में आनंदित होने की चेष्टा करता रहता है, इसीलिए वो अपने मन माने ढंग से सोचता है कि इस तरह से मुझे ना आनंद मिलेगा, इस तरह से मुझे आनंद मिलेगा। संसार से मुक्ति प्राप्त करने के विषय में कोई नहीं सोचता, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही अपने इस मनुष्य जीवन को समाप्त कर लेते हैं। अगर वास्तविक लाभ प्राप्त करना है तो फिर हमें भगवान के बताए हुए आदेशों का पालन करना पड़ेगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो मुझसे प्रेम करना होगा, यदि मुझे प्राप्त करना है तो मेरे आदेश का पालन करना होगा, यदि मुझे प्राप्त करना है तो मुझसे संबंध जोड़ना होगा। तो यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। और जैसा कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि
इंसान जो मन जो है वही हमारे दुख का कारण है और उसी मन के द्वारा हम संसार में बारंबार नरक में भी जा सकते हैं और उसी मन के द्वारा हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वास्तविक लाभ जीवन का यही है कि मन को भगवान के चरणों में लगाया जाए और यदि मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो वही मन हमें भगवत प्राप्ति कराने का कारण बनेगा। तो सारा यदि हम वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वही तरीका अपनाना होगा जो भगवत गीता में भगवान ने या कपिल मुनि ने भागवतम में बताया है या शास्त्रों में बताया गया है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किंतु यदि आज भी कोई भगवान श्री कृष्ण या भगवान कपिल के उपदेशों का पालन करता है तो उसे सर्वोपरि लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि कोई मनमाने ढंग से जीना चाहता है तो उसे वह लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण है। जो सेकंड लाइन है उसमें आत्मा है और नीचे वाली लाइन में गति है। उच्चे ययात्म शमलम गुण संग पंकम अस्मिन विदुय कपिलस्य गतिम प्रपद। कि वो जो आत्मा का आवरण था, आत्मा जो ढका हुआ था, वो आवरण हट जाने के बाद अस्मिन विदुय कपिलस्य गतिम प्रपद। जब आत्म साक्षात्कार हो गया अर्थात आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ जो मेल है वो साफ होने, कैसे अस्मिन विधुय, वो साफ होने के बाद उसके जीवन काल में ही साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, उसके जीवन काल में ही भौतिक गुणों रूपी कीचड़ के से विमल हो गई विधुय, फिर कपिलस्य गतिम प्रपद्य और फिर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की जो कपिल देव का मार्ग है, जो कपिलस्य गतिम प्रपद्ये। तो यहाँ पर आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भगवान तथा जीव की केवल गुणात्मक समात्मा को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जितना तक संभव हो भगवान के विषय में अधिक जानने का प्रयास करे। भगवान को पूरी तरह से जान पाना शिव तथा ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या इस संसार के पुरुष कैसे जान सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मत सोचना कि कभी भगवान को पूरा का पूरा जान लोगे, संभव नहीं है। हम जैसे कीड़े मकोड़ों की तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा और शिव जैसे महान त्रिदेव भी भगवान को सही तरह से जान नहीं सकते। छोटे मोटे देवी देवता क्या बात करनी, और हमारी तो कोई औकात नहीं है कि भगवान को जान सके। भगवान का ऐश्वर्य असीम है। हम सोच सकते हैं कि भगवान कितने शक्तिमान है। जो छोटे से भगवान पहले दिन पैदा होते हैं वो सारे तालों को तोड़कर निकल जाते हैं और चले जाते हैं नंदगांव में। वो भगवान जो केवल 6 दिन के होते हैं और इतनी बड़ी राक्षसी को मार देते हैं, वो कृष्ण जो 7 दिन और 7 रातों का तक अपने बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं, क्या उसकी शक्ति के विषय में सोच सकते हैं? भगवान के ऐश्वर्य के विषय में आप सोच सकते हो? भगवान की 16,108 पत्नियां थी। आज के व्यक्ति क्या ऐसा सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहता होगा? ये भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है कि हम यहाँ पर देखें, आप एक पत्नी नहीं संभाली जाती है ना, एक पत्नी से परेशान होते हैं और दो नहीं चार नहीं 16,108 पत्नियों के साथ उतने ही अपने आप को एक्सपेंड करके प्रत्येक पत्नी के साथ अलग अलग क्रीड़ा करते दिखते हैं। ऐसे महान भगवान एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री, सोच सकते हैं कितनी संतान होगी? सोच सकते हैं हम इतनी संतानों को पढ़ाने के लिए पता है कितने टीचर आते थे? उन सारे टीचर्स, वो जो टीचर्स थे وہ جو گرو تھے وہ الگ الگ شکشائیں دیتے تھے ان کے بچوں کو. اور جیسے اس سنسار میں کاؤنٹنگ اگر دیکھا جائے تو ہزار ہے, پھر دس ہزار ہے, پھر لاکھ ہے, پھر دس لاکھ ہے, پھر ارب ہے, پھر کھرب ہے, اس کے بعد آتا ہے نیل. نیل تو نیل ایک نیل اور 96,000 جو تھے نا ان کے ٹیچر آتے تھے بھگوان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ہم سوچ سکتے ہیں کتنی فیس دینی ہوتی ہوگی کرشن کو. ہم پورے اتنے سارے جنموں تک اتنا دھن کما نہیں سکتے جتنی خالی بھگوان شری کرشن کو ان گروؤں کو گرو دکشنا دینی ہوتی ہوگی. لیکن بھگوان کی اس وشال ایشوریا کو, بھگوان کی اس وشال ویبھو کو سمجھ پانا تو بالکل سمبھو نہیں ہے. لیکن یہ بدھی جو ہے نا جتنی بھی بھگوان نے دی ہے اس کا اپیوگ کرو بھگوان کو جاننے میں. بھگوان کو جتنا وہ بہت ڈیپ ہے, لیکن جتنا جتنا ہم بھگوان کو سمجھنے کا پریاس کریں گے, بھگوان جب دیکھیں گے کہ کتنا مجھے سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے, پھر بھگوان کیا کہتے ہیں, تیشام ستت یوکتانام بھجتام پریتی پوروکم ددامی بدھی یوگم تم یہ نام اپیانتی تھے. پھر بس وہ پریاس ہی کرتا رہے, وہ پریم سے بھجن ہی کرتا رہے. اسے مجھے سمجھنے کے لیے جو واستوک بدھی یوگ چاہیے ہوگا وہ میں پردان کروں گا. اس کے ہردے میں جو اجیان کا اندھکار ہے اس سے ناش کرنے کے لیے گیان کا دیپک پرجولت میں کروں گا. اسی لیے شیلا پروپا جی یہاں پر کہتے ہیں کہ منشیہ کو بھگوان تتا جیو کی کیول گناتمک سمانتا جان لینے بھر سے سنتوشت نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, میں بھی سچے آنند ہوں, بھگوان بھی سچے آنند ہے, تو پھر ہمارے اندر کوئی بید نہیں ہے. اتنا کافی نہیں ہے, بھلے ہی گنوں میں ہم بھگوان کے ہی انش ہونے کے کارن بھگوان کے ہی سمان ہیں, پرنتو ماترا کی درشٹی سے بہت 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 ہے. کوانٹیٹی کوالٹی بھلے سیم ہو لیکن کوانٹیٹی الگ الگ ہے. اسی لیے شری پروپاد جی کہتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے سیمت گیان سے جتنا تک سمبھو ہو بھگوان کے وشے میں ادھک جاننے کا پریاس کرے. بھگوان کو پوری طرح جان پانا شیو یا برہما جیسے مکت پروشوں کے لیے بھی کٹھن ہے, تو بھلا انہیں انیا دیوتا یا اس سنسار کے پروش کیسے جان سکتے ہیں, تو بھی مہان بھکتوں کے. یہاں بھگوان کو جاننے کا ایک سرل اپائے بتاتے شیلا پروپاد جی کہتے ہیں, تو بھی مہان بھکتوں کے سدھانتوں تتھا شاستروں میں اپلبدھ آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے بھگوان کے وشے میں بہت کچھ جانا جا سکتا ہے. شاستروں میں بھگوان کے وشے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. جو شدھ بھکت ہوتے ہیں وہ ان کے دوارا یدی ہم جاننے کا پریاس کریں تو ہم بھگوان کے ایشوریا کو سمجھنے کا کن رنج ماتر ادھیکاری بن سکتے ہیں. بھگوان کے اوتار مہامنی کپل نے اپنی ماتا کو بھگوان کے ویکتیگت سوروپ کے وشے میں پوری طرح سے اپدیش دیا. بھگوان کپل نے بھگوان کے سوروپ کا اپدیش دیا اپنی ماتا کو, اور پھر جس سے انہیں بھگوان کے ویکتیگت روپ کا ساکشاتکار ہو سکا اور وہ ویکنٹھ لوک میں ستان پراپت کر سکے جہاں پر بھگوان کپل کا آدھیپتیہ ہے. ابھی یہاں شیلا پروپاد جی ایک بہت ہی سندر بات بتا رہے ہیں کہ کیونکہ بھگوان کے سوروپ کی اور بھگوان کپل کے سوروپ کی اور آکرشت ہوئی ان کی ماتا, بھگوان کپل نے پورا کا پورا اپنے سوروپ کا وستار سے ان کو درشن کرایا, تو بھگوان کپل کے سوروپ کی اور آکرشت ہوئی. تو پھر بھگوان انہوں نے کیا, جس سے انہیں بھگوان کے ویکتیگت سوروپ کا ساکشاتکار ہو سکا اور ویکنٹھ لوک میں استھان پراپت کر سکے جہاں پر بھگوان کپل کا آدھیپتیہ ہے, تو پھر بھگوان کپل کے لوک میں ان کو استھان پراپت ہوا. اب یہاں بہت ہی سندر بات ہے, اس کو دھیان سے سنیں گے کہ بھگوان کے پرتیک اوتار کا پرویوں میں اپنا اپنا دھام ہوتا ہے. جتنے بھی اوتار ہیں نا, متسیہ, کچپ, وامن, وراہ اور کپل دیو اور جتنے بھی ہیں, ان سب کا ایک اپنا اپنا الگ الگ تھام ہے. ٹھیک, بھگوان کے پرتیک اوتار کا برویوں میں اپنا اپنا دھام ہوتا ہے, اتھا بھگوان کپل کا بھی اپنا ایک پرتھک وائکنٹ گرہ ہے. आध्यात्मिक आकाश शून्य नहीं है, इसमें अनेक वैकुंठ ग्रह हैं और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी भगवान के जिस भक्त होते हैं वो जिस जिस स्वरूप का पूजन करते हैं, जिस जिस स्वरूप से प्रेम करते हैं, तो आध्यात्मिक आकाश में उस स्वरूप का एक वैकुंठ है। तो वैकुंठ और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं, ऐसा नहीं वहां पर अकेले बैठे हुए हैं, असंख्य विस्तारों के द्वारा वहां पर शासन करते हैं और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। जो शुद्ध भक्त भगवान के पास जाते हैं वैकुंठ लोक में, तो उनको वही ऐश्वर्य प्राप्त होता है जैसा कि भगवान के पार्षदों को और भगवान का होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान स्वयं या अपने पूर्ण अंश के रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंत अवतार कहते हैं। जब भगवान अपने अंश के रूप में अवतरित होते हैं, मतलब भगवान का एक अंश होता है, तो उसको अंश रूप, अंश अवतार, कला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब भगवान के आदेश से उसका कोई पार्षद अवतार लेता है तो उसे ऐसे अवतार को शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, ना कि खुद के स्वार्थ से प्रेरित अपना विज्ञापन करने वाले किसी भी कल्पना से। भले ही भगवान के शक्ति आवेश अवतार हो या गुण अवतार हो या कला अवतार हो या मनवंतर अवतार हो या अंश अवतार हो, सबकी पुष्टि कहाँ पर बताई जाती है? शास्त्रों में बताई जाती है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। अब इस भले भगवान के कोई भी अवतार भी आ जाते हैं तो भी वो यही बताते हैं कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और उसी के विषय में बताते हैं। परम सत्य की निर्विशेष धारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है। लेकिन यदि कोई भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है तो वो क्या है कि भगवान के उस स्वरूप को निषेध कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों में बताया, जो बड़े बड़े भक्त लोग, जो बड़े बड़े देवता लोग जिस भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं, बस यहाँ पर चार ज्ञान की किताबें समझने वाले बस इतने महान हो गए कि भगवान के स्वरूप को ही मानना छोड़ देंगे क्या? बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को मानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, शिव जी कहते हैं सत्य हरि कथा, हरि सत्य हरि कथा अनंता। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई स्वरूप नहीं? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तो निषेध मात्र है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न होता है। जीवात्मा अपनी वैधानिक स्थिति से ही आध्यात्मिक रूप से भगवान के जैसे गुणों वाले होते हैं और दोनों के बीच जो अंतर है वह उतना ही है कि भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हुए बिना सदैव सर्वोपरि एवं विशुद्ध कारण कुलचित होने के मात्र हैं। जीव आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति से ही आध्यात्मिक रूप से भगवान के जैसे गुण वाले हो सकते हैं, मतलब जो क्वालिटी है वो भगवान के जैसी है और दोनों के बीच में अंतर है वह इतना है कि भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हुए बिना ही सदैव सर्वोपरि एवं विशुद्ध रहते हैं, जबकि जीव आत्मा सच, रज तथा तम के भौतिक गुणों से संग के कारण कुलुषित होने के मात्र के पात्र होते हैं, क्योंकि वो भौतिक गुणों का संग करते हैं, सत्वगुण रजोगुण, इसलिए सदैव कुलुषित हो जाते हैं। तीनों गुणों से उत्पन्न यह दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्तिमयी सेवा के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही भगवान के भक्तिमयी सेवा में लगा रहता है वह आत्मज्ञान से प्राप्त होने
प्राप्त वह आत्मज्ञान प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ सांसारिकता से विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह पूर्ण रूप से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में बताया गया है। मांसयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सम अतीतैत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीव आत्मा मुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके गुण अवतार रूप दत्ताराम तथा नरसिंह की दिव्य प्रेमामय भक्ति सेवा कर सकता। इस प्रकार दिव्य भक्तिमय सेवा की वृद्धि द्वारा भगवान क्रमशः ब्रह्म गतिम या आत्म गतिम की ओर अग्रसर होता रहता है और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम से को प्राप्त होता है। भगवत भक्ति की जीवन निज भगवत भक्ति की निजर्मी कारण शक्ति इतनी अधिक होती है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि केवल भक्ति कर बाकी जितने भी वस्तुएं जैसे ज्ञान और कर्म वो सब खुद ब खुद भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान तो प्राप्त करते ही साथ साथ सांसारिक संसार से विरक्ति भी हो जाती है और इस तरह पूर्ण रूप से मुक्त होकर भगवान के धाम को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जीव आत्मा वैसे तो अमुक्त है यानी संसार में है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार राम या नरसिंह की दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, इस दिव्य प्रेममयी सेवा की वृद्धि द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गति या आत्मगति को प्राप्त हो जाता है और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यानी जितना जितना जीव के अंदर क्षमता होती है इतना उतना उसे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना जितना वो प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रयास करेगा उतना ही अधिक तीव्रता से भगवान उसे वास्तविक लाभ प्रदान करेंगे और पूर्ण मुक्ति के लिए इसी जीवन में उनको वास्तविक मुक्ति क्या है जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण मुक्त दास। तो भगवान के दास के स्वरूप में जब वो अपनी स्थिति को समझ लेता है तो उसको मरने की जरूरत नहीं, उसे इसी भौतिक जगत में ही आध्यात्मिक साक्षात्कार यानी भगवत प्राप्ति का आनंद प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।